ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बढ़ी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के जवाब के बाद सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित। और फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज भारत यूनानी पद्धति में शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल और दवाओं के निर्माण के मामले में दुनिया में अग्रणी स्थान रखता है। आज नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज यूनान और मध्य एशिया के देशों में यूनानी चिकित्सा पद्धति का उतना उपयोग नहीं होता जितना भारत में होता है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि यूनानी प्रणाली से जुड़े शोधकर्ता और चिकित्सक आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी के उपयोगी पहलुओं को अपना रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों को उचित सम्मान देकर सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार यूनानी समेत आयुष चिकित्सा पद्धतियों को मुख्य धारा में लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग के मार्गदर्शन में कई यूनानी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में अध्ययन और अनुसंधान चल रहा है तथा पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान में नई पीढ़ियां ज्ञान और अनुभव की प्राचीन विरासत को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत 10वें स्थान से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बड़ी है।
आज भारत की बायोफ्यूल्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने के लिए तैयार है। हमारे पास 500 मिलियन मैट्रिक टन्स का सस्टेनेबल फीड स्टॉक है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना और लगातार एक्सपांड हो रहा है। इससे 28 नेशंस और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पेरिस समझौतों के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला G20 देश है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी बल्कि दुनिया की प्रगति में भी योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश का ऊर्जा क्षेत्र इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का जैव ईंधन उद्योग तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है।
आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ। साथ ही CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 2 दशक विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे और अगले 5 वर्षों में देश कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि भारत के कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है।
बीते 10 साल में भारत 10th largest से 5th largest इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 times बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर गहमागहमी जारी है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। राजधानी में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, नेता प्रतिपक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, मनजिंदर सिंह सिरसा और शिखा राय सहित कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद अंतिम नाम पर मोहर लग सकती है। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सचदेवा ने कहा कि श्री नड्डा ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में अपने नेतृत्व और मार्गदर्शन से अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिल्ली के विकास कार्यों और प्रदेश की प्रगति से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और भारत में नीदरलैंड की राजदूत मॉरिसा जेरार्ड्स ने शांति पथ पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC द्वारा आयोजित ट्यूलिप उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि वे दिल्ली को फूलों का शहर बनाना चाहते हैं और ट्यूलिप उत्सव उसी दिशा में उठाया गया कदम है।
बार करीब 3,25,000 ट्यूलिप्स को इंपोर्ट किया गया है NDMC द्वारा। DDA ने भी अपने करीब 20 पार्क्स में ट्यूलिप को लगाया है और इस साल जो बेस्ट पार्ट है 15,000 ट्यूलिप जो है हमारे इंडिजिनियस ट्यूलिप भी यहाँ पर लगे हुए हैं जिनको पालनपुर CSIR ने डेवलप किया है। एम है कि हम 4 साल में ट्यूलिप के इम्पोर्ट को खत्म करके इंडिजिनियस ट्यूलिप को लगाने का काम करें और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं।
भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुख्यमंत्री आवास के लिए जिन संपत्तियों का विलयकरण हुआ था उन्हें उनकी मूल स्थिति में बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उपराज्यपाल से इन संपत्तियों को विघटित करने की मांग की है।
लगभग 50,000 गज का इसको बना लिया था पूरी प्रॉपर्टी को। हमने उपराज्यपाल साहब से मांग की है कि इसको रीमर्ज किया जाए, तमाम प्रॉपर्टी जो उसमें मिलाई गई थी उनको दोबारा से रेस्टोर किया जाए और जिससे कि दिल्ली सरकार के पास जो सरकारी संपत्ति या निवास के लिए जो कम है जिसकी शॉर्टेज रहती है उसको और बढ़ा दिया गया था, उसको वापस पूल में लाए।
दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज संसद में दिल्ली की सैनिक फार्म सहित 69 कॉलोनियों को नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सैनिक फार्म जैसी 69 कॉलोनियों को भी मालिकाना अधिकार देने और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा शीघ्र ही की जानी चाहिए।
दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1700 कॉलोनीज को नियमित कर दिया, मालिकाना अधिकार देने का काम शुरू हो गया, इन सभी कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सैनिक फार्म जैसी 69 अनऑथराइज कॉलोनीज को अभी तक नियमित नहीं किया गया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि सरकार 99% उधार का उपयोग पूंजीगत व्यय और पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावी पूंजीगत व्यय 4.3% है और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% है। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि सरकार प्रभावी पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण और पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए सभी उधार संसाधनों का उपयोग कर रही है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही।
द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 4.3% ऑफ GDP, फिस्कल डेफिसिट 4.4% ऑफ GDP। इट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग ऑलमोस्ट द एंटायर बोरोड रिसोर्सेस फॉर फाइनेंसिंग इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो द बोरोइंग्स आर नॉट गोइंग फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कमिटेड एक्सपेंडिचर और एनी ऑफ दोस काइंड्स, इट्स गोइंग ओनली फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स।
लोकसभा में वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में महिलाओं के कल्याण के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। ये आवंटन पिछले वर्ष से 37% अधिक है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला उद्यमी देश की आर्थिक प्रगति के पीछे प्रेरक बल हैं। उन्होंने कहा कि जेंडर बजट अब कुल बजट का 8.86% है। ये वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के 6.8% से अधिक है। उन्होंने इस वर्ष 18 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 7वें पोषण पखवाड़े की भी घोषणा की। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उद्यान 30 मार्च तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में लोग मंगलवार से लेकर रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं।
इस वर्ष उद्यान में पर्यटकों के बीच ट्यूलिप और अन्य प्रजातियों के 140 प्रकार के गुलाब के फूल आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के 80 से ज्यादा प्रजातियों के फूल भी आगंतुकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सोमवार को रखरखाव के कारण उद्यान बंद रहता है। उद्यान में पर्यटक गेट नंबर 35 से एंट्री कर सकते हैं। आगंतुक केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन तक के लिए मेट्रो ले सकते हैं, जहां से हर 30 मिनट के अंतराल पर उद्यान के लिए शटल बसें उपलब्ध हैं। आगंतुक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें जा सकते हैं। अमृत उद्यान में घूमने के लिए बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से टिकट बुक किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल गुरु रविदास जयंती के अवसर पर राजधानी में अवकाश की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर कल दिल्ली सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इसके चलते कल दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम बंद रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी। प्रत्याशी 19 फरवरी को नाम वापस ले सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है। नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को होगा और मतगणना 12 मार्च सुबह 8 बजे से शुरू होगी। दिल्ली पुलिस ने ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान और उनके समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने कहा कि इस दौरान ओखला से नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्ला खान ने अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी को फरार करने में सहायता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल को एक दूरदर्शी विचारक बताया, जिन्होंने खुद को भारत की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन नागरिकों को एक मजबूत राष्ट्र की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्री मोदी ने आगे कहा कि पंडित दीनदयाल का बलिदान और आदर्श प्रगति और एकता के मिशन में एक मार्गदर्शक शक्ति बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, जिस पर परीक्षार्थी चर्चा करना चाहते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा में विशेष रूप से इस विषय को समर्पित एक एपिसोड है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एपिसोड कल प्रसारित किया जाएगा और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इसमें भाग लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को थाई पूसम की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर श्री मोदी ने सभी की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कामना की कि भगवान मुरुगन की दिव्य कृपा देश के नागरिकों को शक्ति, समृद्धि और बुद्धि प्रदान करे। दिल्ली में आज धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बड़ी है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के जवाब के बाद सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित। और फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।